नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जज इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े कह रहे हैं 400 सीटें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था के बीजेपी के पानी में नमक की तरह घुल जाने के इस समय में जनता खबरदार ही नहीं होना चाहती है। अरुण गोयल का चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देना, बंगाल के दौरे के बाद इस्तीफा देना, बंगाल के चुनाव और चुनाव आयोगों के संबंधों को भी नए सिरे से रोशनी में लाता है। इस राज्य में चुनाव आयोग को जिस राजनीतिक संदेश से देखा जाता है और क्यों देखा जाता है, हम इस पर आज के वीडियो में बात करेंगे। जिस दिन चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी प्रकाशित करेगा, उसी दिन दो दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कमेटी विचार कर रही होगी, जिसमें सरकार का ही बहुमत है। एक तरफ प्रधानमंत्री ही चुनेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। आईएएस की सेवा से उन्होंने वीआरएस लिया, रिटायर हुए और इसके 24 घंटे के भीतर चुनाव आयुक्त बना दिए गए। कई नामों की सूची में से अरुण गोयल का चुनाव हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के भी कान खड़े हो गए कि इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी क्यों। क्या अपने किसी खास को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए यह सब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल के मामले में ही कहा था कि चुनाव आयुक्त यस मैन नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के मामलों की भी जांच कर ले। मगर जिस आयुक्त को यस मैन की तरह देखा गया, उन्होंने किस बात पर नो कह दिया, इस्तीफा दे दिया, झट से स्वीकार भी हो गया। इस वीडियो में इस पर बात जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं में संपर्क की बात तो अब खुद भीतर के ही लोग करने लगे हैं, अपने संपर्क की बात बाहर आकर बताने लगे हैं। इस तस्वीर को देखिए, संपर्कों की सारी सीमाएं टूट गई हैं। चार दिन पहले तक जो शख्स जज था, वो कैसे प्रधानमंत्री के हाथ पर अपना सर झुका रहा है और प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। पर्दे में कुछ भी नहीं, सब आपकी आंखों के सामने है। सब दिख रहा है कि गांगुली का मोदी से संपर्क कैसा था और कैसा है, मोदी के संपर्क में आने के लिए गांगुली ने क्या क्या किया और संपर्क में आने के बाद मोदी गांगुली के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, भीतर का संपर्क बाहर मंच पर खिलखिला रहा है। जस्टिस गांगुली पर आरोप लग रहे हैं कि जज की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने न्यायपालिका की साख को टोपी पहना दी, लेकिन यहां तो साफ दिख रहा है कि जस्टिस गांगुली को बीजेपी ने अपनी टोपी पहना दी है। परिवारवाद की आलोचना करने वाली बीजेपी का यह संपर्कवाद यहां गुल खिला रहा है। न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक में घुन लग रहे हैं। एक ऐसे समय में जब इस जज के फैसले की समीक्षा की बात हो रही है, चुनाव आयुक्त के पद से अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर संदेह और चिंताएं बढ़ गई हैं। इस्तीफे के बाद ट्विटर पर कई लोग मजाक कर रहे हैं कि अरुण गोयल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह अपने आप में शर्मनाक है कि लोग चुनाव आयुक्त को लेकर इस तरह से देखने लगे हैं। हमें नहीं पता कि संवैधानिक पदों पर बैठे ऐसे कितने लोग बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी उनके संपर्क में। इस संपर्क के कारण और इस संपर्क को निभाने के लिए कितने लोगों को इन संस्थाओं पर बिठाया जाना है और वे लोग इस संपर्क की खातिर क्या क्या करने वाले हैं। निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा सामान्य घटना नहीं है। उनके इस्तीफे से चुनाव आयुक्त के दो दो पद खाली हो जाते हैं, बस रह जाते हैं अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। आखिर हुआ क्या होगा कि अरुण गोयल ने निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा ही दे दिया, जबकि वे 2027 में रिटायर होते, मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनने का उन्हें मौका था। क्या बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच टकराव बढ़ गया, या टकराव किन बातों को लेकर हुआ होगा। कुछ तो बात हद से गुजरी होगी, तभी तो अरुण गोयल ने अपने इस्तीफे का ईमेल मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा तक नहीं। ऐसा नहीं है कि सीईसी उनके बॉस हैं, मगर तब भी उनका सीईसी को नहीं बताना अपने आप में दिखा रहा है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की आंतरिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को भेजा और 24 घंटे के भीतर स्वीकार भी हो गया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के जरिए इसी तरह की जानकारियां सामने आई हैं। विवाद व्यक्तिगत टकराव में क्यों बदला, उसे पूरी तरह समझने में ये जानकारियां शायद काफी नहीं, लेकिन दिख रहा है कि अरुण गोयल अब और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। खबरें छपी हैं कि गृह सचिव अजय भल्ला ने मध्यस्थता करने की कोशिश की मगर सफल नहीं हुए। अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा और उसे 24 घंटे में स्वीकार कर लिया गया। 5 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रेस वार्ता में वे शामिल नहीं हुए और दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए। तब कहा गया कि सेहत खराब होने के कारण आना पड़ा, लेकिन अब हिंदू में महेश लांगा ने रिपोर्ट किया है कि उनकी सेहत एकदम ठीक थी। वापस आने का असल कारण थे सीईसी राजीव कुमार। आगे बढ़ने से पहले हम यहां बताना चाहेंगे कि इस सरकार से लोहा लेना आसान नहीं। अगर गृह सचिव अजय भल्ला मध्यस्थता कर रहे हैं, अरुण गोयल तब भी नहीं मान रहे हैं, तब यह बात बेहद गंभीर ही होगी। 2019 की एक घटना का यहां जिक्र जरूरी है। अशोक लवासा ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लिनचिट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने 4 अलग अलग मामलों में प्रधानमंत्री को क्लिनचिट दिए जाने से इनकार किया और प्रतिकूल टिप्पणी की। अशोक लवासा चाहते थे कि चुनाव आयोग उनकी अल्पमत की राय को दर्ज करे। उनकी एक चिट्ठी भी मीडिया में आई जिसमें उन्होंने कहा कि कई मामलों में उनके अल्पमत के फैसले को दर्ज नहीं किया जा रहा और लगातार उनकी राय को दबाया जाता रहा है। 18 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया, जो 13 दिन बाद स्वीकार किया गया। अशोक लवासा इस्तीफा नहीं देते तो मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे। उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। अशोक लवासा के खिलाफ ही भ्रष्टाचार के मामलों में जांच बिठा दी गई। उनके बेटे से ईडी ने फेमा के केस में पूछताछ की। आरोप था कि उनकी कंपनी में मॉरिशस की एक कंपनी ने पैसा लगाया। उनकी पत्नी नोवल सिंगल लवासा की कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी के बारे में आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस दिया। पेगासस जासूसी कांड की रिपोर्ट में द वायर ने लिखा कि अशोक लवासा का फोन भी उस सूची में था जिन पर संभावित रूप से जासूसी सॉफ्टवेयर डाला गया था। अशोक लवासा के बाद अब अरुण गोयल का यह इस्तीफा हुआ है। कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का अवसर क्यों ठुकराएगा? ठुकरा सकता है जब वह यह तय कर ले कि इस पद पर संविधान की रक्षा करने के लिए आया है, पद पर बैठकर उसके साथ छेड़छाड़ करने नहीं। अशोक लवासा के इस्तीफे का कारण आपके सामने है। अरुण गोयल ने इस्तीफा किन कारणों से दिया पता नहीं। क्या बगावत में इस्तीफा दिया, अभी पूरी तरह साफ नहीं। यह इसलिए बता रहा हूं कि सरकार में नहीं बोलना है अफसरों को ठीक से पता चल गया है। बोलने की क्या कीमत होगी, उन्हें याद भी हो गया है। ईडी और आईटी वही चलाते हैं, फर्जी केसों में वही फंसाते हैं। तो ऐसे अफसरों से भरे तंत्र में कोई चुनाव आयुक्त बगावत कर जाए, कोई साधारण घटना नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में भारती जैन की रिपोर्ट अरुण गोयल के इस्तीफे में कुछ नए एंगल जोड़ती है। इसमें लिखा है कि अरुण गोयल के इस्तीफे से एक दिन पहले तक चुनाव आयोग में सब कुछ सामान्य था। 7 मार्च को गोयल और राजीव कुमार ने 27 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के साथ बातचीत की। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ने किया था। द हिंदू के महेश लांगा की रिपोर्ट से अलग इस रिपोर्ट में भारती जैन ने लिखा है कि बंगाल में अरुण गोयल की तबीयत वाकई खराब हुई थी। 5 तारीख की सुबह ओबेरॉय ग्रैंड होटल में उनके लिए एक डॉक्टर को भी बुलाया गया। दवा शुरू हुई लेकिन अरुण गोयल को फिर भी ठीक नहीं लगा, इसलिए वो प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए। उसके बाद अरुण गोयल जब वापस दिल्ली आए तो पूरी टीम के साथ एक ही फ्लाइट में आए, जिसमें सीईसी राजीव कुमार भी थे। 8 मार्च को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक थी जिसमें तय होना था कि कहां कैसे तैनाती होगी। उसी दिन अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। यह जानकारी महेश लांगा ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है। दोनों की रिपोर्ट में इतना ही अंतर है कि भारती जैन कहती हैं अरुण गोयल की तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने देखा था। महेश लांगा की रिपोर्ट कहती है अरुण गोयल फिट आदमी हैं, उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि कोई पद से इस्तीफा दे दे। उसके बाद अरुण गोयल निर्वाचन सदन नहीं गए, जो चुनाव आयोग का मुख्यालय है। द हिंदू के महेश लांगा ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, बंगाल दौरे के दौरान दोनों के बीच मतभेद दिखाई दिए, किसी को इस्तीफे की जानकारी नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद है इसकी भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने 9 राज्यों में चुनाव कराए, तब भी दोनों के बीच इस तरह से मतभेद नहीं उभरे थे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की अदिति अग्रवाल की रिपोर्ट इस पूरे प्रसंग में कुछ नए विवाद जोड़ती है। अदिति ने बताया कि 17 फरवरी को यह विवाद सामने आया, जब शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे के गुट को दे दिया गया। 1971 में चुनाव आयोग का सर्वसम्मति से एक फैसला था कि जब भी ऐसा मामला आएगा तब देखा जाएगा कि विधायिका में और पार्टी के संगठन के भीतर किसका बहुमत है। मगर शिवसेना से सिंबल लेने के मामले में संगठन के भीतर बहुमत पर विचार ही नहीं किया गया। इस आदेश में असहमति दर्ज नहीं की गई, मगर दो आयुक्तों की राय अलग अलग थी। इसी आधार पर एनसीपी का सिंबल और नाम अजीत पवार गुट को दे दिया गया। इससे अरुण गोयल सहमत नहीं थे। साथ ही जब चुनाव आयोग के मुख्यालय में रखरखाव और पुनर्निर्माण का काम हो रहा था, तब अरुण गोयल ने पैसा बहाने पर आपत्ति जताई। वे चुनाव आयोग के अधिकारियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का भी विरोध करते रहे हैं। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर भी थी कि चुनाव आयोग के अधिकारी जब भी जब्ती करते हैं तब प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। उम्मीद है आप इन बातों को प्राथमिकता देंगे और ध्यान से सुन रहे हैं। क्या चुनाव आयोग में यह सब हो रहा है? आचार संहिता लागू होने के बाद जब भी जब्ती होती है तब प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, तो क्या इन जब्तियों को राजनीतिक नजरिए से देखा जा सकता है? एक सवाल और है कि क्या विपक्ष के नेताओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? उम्मीद है अरुण गोयल अपनी जवाबदेही समझेंगे और सूत्रों के हवाले से छन कर आ रही इन सभी जानकारियों को देश हित में सार्वजनिक करेंगे। बंगाल की तैयारियों को लेकर अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच मतभेद की खबरें सभी जगह हैं। बंगाल में यह राजनीतिक मुद्दा भी बनने लगा है। कोलकाता में जनगर्जना रैली के दौरान ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने वाले अरुण गोयल को सलामी दी। शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने कहा, सबसे पहले इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त को सलाम करना चाहती हूं। न्यूज रिपोर्ट है कि कैसे वे बंगाल पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन गोयल ने स्वीकार नहीं किया। इससे साबित होता है कि केंद्र चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। मई 2021 में चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में पहली बार बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा था, चुनाव आयोग मदद ना करता तो भाजपा को 30 सीटें भी ना आती। इस चुनाव में आयोग की नाक के नीचे रिगिंग हुई है। उन्होंने मांग की कि फौरन चुनावी सुधार किए जाएं, नहीं तो देश का लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में होगा। उस चुनाव में टीएमसी ही नहीं, वामपंथी दलों ने भी शिकायत की थी कि मतदान केंद्रों पर हुड़दंग हुआ है और चुनावी प्रक्रियाओं की अवहेलना हुई है। आरोप लगाया गया कि गुंडों ने बूथों पर कब्जा कर लिया और चुनावी मशीनरी और पुलिस चुपचाप देखती रही। बंगाल में ईडी और जांच एजेंसियों का प्रकोप पहले से रहा है। तृणमूल नेताओं के यहाँ छापे मारना, जेल में डालना, फिर बीजेपी में बुला लेना। जब से जस्टिस गांगुली इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं, तब से यह भी चर्चा चल पड़ी है कि कोर्ट का इस्तेमाल होने लगा है। चुनाव आयोग को लेकर पहले से ही चर्चा चलती रही है, मगर बंगाल के दौरे से लौटकर इस्तीफा देने से चुनाव आयोग को फिर से उसी संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 7 चरणों में मतदान हुए। हर चरण में धीरे धीरे केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। प्रथम चरण में 50% बूथों पर तैनाती की गई। चौथे चरण तक आते आते 98% बूथों पर तैनाती कर दी गई। भाजपा ने केंद्रीय बलों की तैनाती का स्वागत किया, लेकिन विपक्षी दलों ने कहा था उन्हीं केंद्रों से ज्यादा शिकायतें आई हैं जहां केंद्रीय बल तैनात हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान बढ़ी हुई तैनाती को लेकर रिपोर्ट आने लगी तो खुद चुनाव आयोग को सामने आकर कहना पड़ा कि केंद्रीय बलों की तैनाती आम प्रक्रिया है, सभी राज्यों में होती है। 2016 में विधानसभा की 294 सीटों के लिए मतदान 7 चरणों में कराए गए, 2021 में 8 चरणों में। 27 मार्च 2021 से लेकर 29 अप्रैल 2021 के बीच किसी चरण में 31 सीटें थी तो किसी चरण में 35 सीटों पर मतदान हुआ। 2 मई को वोटों की गिनती हुई। पांचवें चरण के लिए अप्रत्याशित रूप से 853 कंपनियां तैनात की गई थी, जबकि केवल 45 सीटों के लिए मतदान हुए। एक राज्य में चुनाव संपन्न होने में 1 महीना लगाया गया। 2016 की तुलना में 2021 में बीजेपी की सीटें बढ़ गईं, मगर ममता बनर्जी की जीत पहले से भी बड़ी हो गई। पिछले चुनाव के मुकाबले 2 सीटें ज्यादा जीतीं और वोट शेयर में भी 3% का इजाफा हुआ। चुनाव आते ही बंगाल अलग दिखाया जाने लगता है। कंपनियों की तैनाती की संख्या इस तरह से बताई जाती है जैसे भारत का सबसे अशांत और अराजक राज्य बंगाल है। यही नहीं, 7 से लेकर 8 चरणों में लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान कराए गए। अरुण गोयल के इस्तीफे ने बंगाल की राजनीति में चुनाव आयोग को फिर से मुद्दा बनाया है। अधिसूचना के समय ही पता चलेगा इस बार बंगाल को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी किस तरह की है। अरुण गोयल का इस्तीफा बंगाल से लौटने के बाद हुआ है, इसलिए इन संदर्भों को आप किनारे नहीं कर सकते। यह मामला असाधारण है, बता रहा है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के भीतर भी घुन लगने लगा है। आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बनाए गए तब चुनाव आयुक्त का पद 6 महीने से खाली था। इतने लंबे समय से चुनाव आयुक्त का पद खाली रहे, यह ठीक बात तो नहीं? तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने सुनवाई चल रही थी, तभी अरुण गोयल की फटाफट नियुक्ति कर दी जाती है। ये वही अरुण गोयल हैं जिनके चयन को मिली चुनौती की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे चुनाव आयुक्त चाहिए जो यस मैन ना बने, जो घुटनों पर रेंगे नहीं, बल्कि जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करें। एडीआर ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी और प्रशांत भूषण ही वकील थे। कहा कि जिस तरह से अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है उससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि इनके चयन में इतनी जल्दबाजी क्यों मचाई गई। कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे के भीतर जानकारी मांगी कि बताइए यह सब कैसे हुआ। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि चयन को लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या आपकी प्रक्रिया से ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो सकता है जो स्वतंत्र हो। सरकार का यह तर्क था कि 4 अफसरों के बैच में वे सबसे युवा हैं, इसलिए उनका चयन ठीक रहेगा ताकि वो लंबे समय तक पदभार संभाल सकें। उस समय प्रशांत भूषण ने कहा कि 1985 के उनके बैच में कई अफसर उनसे भी युवा हैं, उनके नाम पर विचार नहीं किया गया, अब उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया है। क्या फायदा हुआ युवा अफसर को चुनने का? अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन 3 साल पहले ही इस्तीफा दे गए। जिस व्यक्ति के चयन पर यह कहा गया कि चुनाव आयुक्त घुटनों के बल ना रहेंगे, उस व्यक्ति का अचानक इस्तीफा देना क्या इशारा कर रहा है? क्या कहा गया या खुद से इस्तीफा दे गए? अगर उन पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा रहा था तो सवाल है, पिछले साल 9 राज्यों में चुनाव हुए, क्या उन पर तब भी दबाव बनाया गया? क्या वो झुक गए थे या विरोध किया था? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की एक व्यवस्था बनाई थी, सरकार ने उसे रद्द कर दी और संसद से नया कानून बना लाई। इस कानून के तहत पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है, क्योंकि अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो चुके हैं। अब अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो अब नए कानून के अनुसार प्रधानमंत्री 2-2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तय करेंगे, जो कमेटी फैसला करेगी, उसमें बहुमत सरकार का। अनूप चंद्र पांडे को रिटायर हुए 23 दिन हो गए हैं, कायदे से उनके रिटायरमेंट के पहले या साथ के साथ नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, खासकर तब जब 2024 के चुनाव की तैयारी होनी है और अधिसूचना जारी होनी है। नए आयुक्तों की नियुक्ति पर सबकी नजर होगी, होनी चाहिए। क्या वही व्यक्ति बनेगा जो पहले से संपर्क में होगा और बाद में भी संपर्क में रहेगा? बीजेपी का संपर्कवाद संविधानवाद पर हावी हो गया है, विपक्ष में परिवारवाद और बीजेपी में संपर्कवाद, संस्थाओं की घाव का मावाद सड़कों पर बहने लगा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।